اخروج جی نندگاہ میں پہنچے ہیں. کرشن بلدیو جی کو اتیجت کر انہیں متھرا لے جا رہے ہیں, رتھ پر چڑھا لیے ہیں اور گوپیاں, طرح طرح کی بھاؤں والی گوپیاں اپنے بھاؤں کے انروپ میں کندن کرتی ہوئی درہ میں ایسے نمجت ہو رہی ہیں, ان کے اشتساتوک بھاؤ ہو رہے ہیں, کوئی کوئی مچھت ہو کر کے گر پڑی ہیں, کوئی کوئی پتلی کی بھانتی مورتی کی پتلی ہوتی ہے ویسے کھڑی ہیں, ہوش نہیں, کوئی رتھ کا لگام پکڑی ہیں, کوئی رتھ کے چکے کے نیچے ہیں, کوئی کرشن کی طرف میں دیکھ رہی ہیں. مانو آج کرشن بھی کنس کے انوچر اکرور ہے تو کرور اس کے سنگ کے پربھاؤ سے اس کے جو درگن ہیں وہ کروتا کرشن میں بھی آ گئی. کرشن ان گوپیوں کو دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں, آج رتھ میں چڑھ گئے, اکرور نے رتھ ہانکا جوش سے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں رتھ چلنے لگا. گوپیاں کھڑی رہیں اور جو مورچت ہیں وہ مورچت رہیں. تو کرشن اتنے کرور کیسے ہو گئے؟ گوپیوں کا کرشن میں جو بھاؤ ہے, کرشن برج میں ہی رہے کیول تو متھرا میں بھی ان کے بھکت ہیں, دوارکا میں بھی بھکت ہیں اور جگہ میں بھی ان کے بھکت ہیں, وہاں بھی تو جانا پڑے گا کہ نہیں. جے جتھان مام پرپت گنتے تام تتھے بھجام, انہوں نے پرتیجا کی ہے. کچھ ان کے کرتویہ بھی ہیں جگت میں, پریم کا آسوادن کرنا ہے اور رسک بھکتوں کے ساتھ میں ان کے لیلا بلاس اتیادی ہیں, کنتو پھر بھی اور بھی تو کچھ کرتویہ ہیں. اس لیے کرشن کچھ گمبھیر ہو گئے. گوپیاں جو رو رہی ہیں تڑپ رہی ہیں مچھلی کی بھاتی, اب کرشن سے رہا نہیں جاتا, دیکھا نہیں جاتا, ان کا چت بھی اتنت دربت ہو گیا اور یہ درشیہ دیکھا نہیں جاتا. انہوں نے اکرور کو تھوڑا سا اشارہ کیا, سہ نہ سکے, اس لیے ایسا نہیں کہ وہ کرور بن گئے, سہ نہیں سکے, درشیہ کو دیکھنے میں وہ اپارک ہو گئے, اس لیے انہوں نے اشارہ کیا بنانے لگے. یہاں پر کرشن جگتی ان بھاؤں سے وبھاوت ہو کر کے دربت ہوئے, کنتو بلدیو جی اور اکرور ان کے ساتھ میں تھے, اس لیے کہیں ان کرشن کے اس ہدے جو ان کا دربت ہو گیا ہے یہ دونوں نہ سمجھ پائیں, اس نے کیا کیا, گمبھیر ہو گئے. چتر دربت ہو رہا تھا, مانو اب رو دیں گے تو بھی بلاپ کریں گے گوپیوں کی بھاتی, کنتو کر نہیں سکے. جیسے چیتنیہ مہاپربھو جی بجاتی دیکھ کر کے اپنے بھاؤں کا سمبرن کرتے تھے, جیسے وہ اڑائی گرام میں جا رہے ہیں اور ان کو روپ کے ساتھ میں روپ جی تھے, مہاپربھو جی بھی تھے اور ساتھ ساتھ میں ولبھاچار جی تھے. ولبھاچار جی ہیں باتل رس کے رسی, اس لیے وہ مدھر رس کے بھاؤں کو نہیں سمجھتے. اس لیے بجاتی ہیں جگتی پریمی ہیں بھکت ہیں, کہاں انت باتل رس کے. کبھی مہاپربھو جی ان کے سامنے گوپنیہ رکھا, یہ سب برہما کے لیے بھی مشکل ہے. ادھو جی برج میں گئے, گوپیوں کا ساتھ دیا, تبھی گوپیوں کا یہ بھاؤ ان میں سنکرمت نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ان کی دیکھا شکشا ایسی نہیں ہے, دیکھا شکشا ایسی نہیں. جب تک کہ ایسا کوئی نہ ہو, ایسا پریمک ہو جس میں گوپیوں کا یہ بھاؤ ہو اور اس سے دیکھا شکشا نہ ہو تو نہیں ہوگا. اس لیے کرشن نے ادھو جی کو گوپیوں کی پاٹھشالا میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, اپنے ماتا پتا کی سانتونا کے لیے نہیں. وہ نہیں ہو سکتا ادھو جیسے آدمی کے دوارا. گوپیوں کو ادھو جی کے باتوں سے اور تاپ ادھک بڑھ گیا, और मरने लगी, उद्दीपना होने लगी। इसके लिए जो गोपियों को संतना होगी, माता पिता को संतना होगी, इसके लिए नहीं भेजा। ये साधारण लोग जानते हैं कि माता पिता उनके अर्थनों की व्यंजना ऐसी है गंभीर, जिसे कि साधारण लोग नहीं समझ सकते, वो गोपियां ही समझेंगी। या उसमें मंत्र में जो दीक्षित रहने वाले रूप गोस्वामी इत्यादि हैं, जो सहचर्या हैं, वो क्यों समझेंगी? तो इस विषय में जिनका संस्कार नहीं हुआ वो कैसे समझेगा? इसलिए उद्धव जी को भेजा भी तुम्हारा संस्कार हो, तब कभी उद्धव जी को संस्कार होने पर भी ये नहीं हुआ जी गोपियों की सहचरी बन जाऊं। बस गोपियों की चरण धूलि के लिए कुसुम सरोवर में आज भी उनके चरणों की रज की सेवा कर रहे हैं, नहीं आया तो ऐसा ही हो जाएगा। इसे अद्वैतवादियों का संग करने से, मायावादियों का संग करने से, या जिनको ये सहचरी का भाव नहीं है, ऐसे लोगों के जिनमें वास्तव्य की भावना है, उनका संग करने से ये नहीं होगा। जिसका सहचरी रूप गोस्वामी का ये भाव है, वो होने से तब ये इन चीजों को समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन भावों को विशाखा जी की सहायता से समझा। कृष्ण के लिए भी यह अगम्य है। जय धर्म में ऐसा लिखा, कृष्ण रस के समुद्र हैं, रसो वैश्य। कृष्ण अनेक रस हैं और एक रस हैं। एक रस में वो आत्मरस का अनुभव करते हैं। सब रसों के जो विषय हैं कृष्ण, उस विषय के रूप में उनका साधन करते हैं। यशोदा मैया की जी का वात्सल्य, लाड प्यार जो करती हैं, उसको तो समझते हैं, किंतु यशोदा जी जिस भावना से लाड प्यार करती हैं, उसको नहीं समझते उनके अंदर में क्या भावना। गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं, किंतु किस भाव से राधा जी मुक्षित हो जाती हैं, कैसे उनको मान होता है, कैसे उनमें अनुराग होता है, माधव इत्यादि की दशाएं होती हैं, ये कृष्ण के लिए ये बहुरस है। बहुरस माने अपना आत्मरस और उन गोपियों का भावों का साधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा जी का भाव उनके लिए अगम्य है, अपरिचित है, ये बहुरस है। उन गोपियों में जो भाव है उनको नहीं जानते, ये कैसे होगा? उनके जो अपने जो रूप मंजरी इत्यादि हैं, इस रस में जो विभावित चित्त वाले हैं, उनके लिए होगा। अब विशेष करके जिनको गोपाल मंत्र नहीं मिला, जिसको काम गायत्री नहीं मिली, ये रहस्य सब हैं। इसलिए ये सब के द्वारा मंत्र की स्फूर्ति से इन चीजों को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता कभी। लाख जन्म लाख चेष्टा करे, जिनको ये भाव ही नहीं वो कहां से दे सकता है? उनके संग से नहीं हुआ, विद्वानों के संग से शब्दों का ये ऊपर का जो रूढ़ अर्थ है वो मालूम होगा। उसकी अभी व्यंजना उसके भीतर में क्या छिपा है, ये अनुभूति का विषय। एक केवल व्याकरण से अर्थ करेगा वो क्या बतला सकता है? एक आदमी गीता पढ़ रहा है और गीता पढ़ते पढ़ते रोता है, और उच्चारण कैसे करता है? अनुस्वार विसर्ग का कोई भी बात नहीं, ऐसे पढ़ता है रोता है। और पंडित लोग अनुस्वार विसर्ग का उच्चारण करते हैं, बड़े ठाट से पढ़ते हैं, और उनको कुछ नहीं होता। महाप्रभु जी गए, उससे पूछा, भाई आप गीता पढ़ते हैं, आप रोते क्यों हैं, बात क्या है? मैं निरक्षर आदमी हूं, मैं कुछ अर्थ नहीं जानता, मैं जब गीता खोलता हूं तो देखता हूं कि कृष्ण का रथ खड़ा है, अर्जुन विषादग्रस्त है, और कृष्ण उनको समझा रहे हैं, ऐसे प्रेम भरी बातों से समझा रहे हैं, ये सुनकर के हमारा चित्त द्रवित हो जाता है, मैं अपने को रोक नहीं पाता। महाप्रभु, ओ यही तो जवाब था, यही अनुभूति है। इन पंडितों को मूर्ख गपटप करने वाले कंग विसर्ग इत्यादि का उनसे ये भाव नहीं आएगा। इसे यहां पर कह रहे हैं कि वो जितनी प्रकार की गोपियां हैं अपनी भावना के अनुसार, कोई गिर पड़ी है, कौन गिर पड़ी? श्रीमती राधिका और उनकी सहेली। उसमें जो कम है वो अभी मूर्ति जैसी खड़ी है, चित्रलिखकार मूर्ति की भांति, जैसे ये मूर्ति बैठी है, थे भक्ति विनोद ठाकुर हैं किंतु बोलेंगे चालेंगे नहीं, ऐसे मूर्ति की भांति खड़ी है। जो गोपियां आगे बढ़कर के रथ को पकड़ लिया, उनसे कम उनकी अनुभूति है ना विरह, इसलिए उसको पकड़ रही हैं और रो रही हैं, उनको होश है। और उनको कृष्ण अपने इशारे से कर रहे हैं आयास्ते, मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं कल परसों में, अभी जा रहा हूं आज कल, और कल मैं वहां रह करके काम समाप्त करके परसों में लौट आऊंगा। आयस्ते दौत्य कई, दौत्य के मैंने जिनको होश था अपने वचन रूपी दूत से, उनको कहा, और वो जाकर के ललिता इत्यादि जो अभी चित्र लिखित खड़ी हैं या जो गई हुई पीछे जाकर के वो कहेंगे कि कृष्ण ये बोल करके हमको गए हैं, जो उनसे कह दो जो मैं आ रहा हूं, क्योंकि अभी तो सुन नहीं सकती, वो तो एकदम मूर्छित हैं, इसलिए उनको कृष्ण कहने से भी काम जाएगा, काम में जाएगा वो तो नहीं हो सकता। इसलिए जिनको कुछ होश है, जिसको कुछ बीरा का साथ उतना नहीं है, जिनको मादन मोदन का भाव नहीं है, वो लोग कुछ सुन सकी, उनको कृष्ण ने कहा अपने पास, मैं आ रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं, कल रह करके परसों मैं तुझे मैं जरूर लौटूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परसों लौटूंगा, आयस्ते मैं आऊंगा। अब कृष्ण चले गए, ये धूल उड़ रही है, पहले रथ दिखा, कृष्ण पीछे मुड़ करके उनके तरफ में देख रहे हैं विषाद भरी नेत्र, बिना की बैठा किसे समझाएं, बलदेव जी को समझाएं, नाक्रूर जी को समझाएंगे, उनकी बेरबता कौन समझेगा, जिन गोपियों के लिए कृष्ण का हृदय कैसे तड़प रहा है ये कैसे समझाएं, क्यों नहीं समझा सकते, यदि वही अनंग मंजरी होती तो कुछ समझ जाती है। बलदेव प्रभु के रूप में बात्सल्य लेकर बस दास्य सख और बात्सल्य इनमें है, इसलिए ये नहीं समझ सकते इनके भावों को, इसलिए बलदेव जी से नहीं कहा, अक्रूर से कहेंगे, अक्रूर से अपने आंखों को ऐसे पोंछ लिए होंगे, छिपा करके पूछ लिए होंगे, ऐसे गंभीर एकदम वज्र के समान कठोर बह गए उनके देखने, किंतु हृदय उनका एकदम कैसा हो रहा है, विकलित हो रहा है, क्या करूं क्या करूं, आंखें दबदबाई हैं, इसलिए मुख फेर करके और गोपियों की तरफ देखे, गोपियां देख रही हैं, अब इनका चित्र द्रवित हो गया, शायद आ जाए अभी लौट करके, अभी जा रहे हैं बीच से लौट आएंगे, जब तक खड़ी रही जबकि धूल दिखाई दी, धूल भी शांत हो गई, अब ये निष्ठुट नहीं आएगा, हताश हो गई, निराश एकदम हो गई, निराश होने के पश्चात वहीं पर बैठ गई होंगी। दूसरी गोपियों ने उनके और जिनको इतना विरह नहीं, या घर वाले जो हैं आकर के किसी प्रकार से वो उनको लेकर के जा रहे हैं, इसी के लिए कह रहे हैं, ता निराशा निर्दृतो गोविंद विनिवर्तन, और जो गोपियां थी वो क्या हुआ, कृष्ण के विरह में तड़पती हुई वो गान करती हुई मूर्छित हो गई, गोविंद दामो शर्माधरेती, हे गोविंद दामो गोविंद, अपने अपनी भावना के अनुसार नहीं, वो जो गोपियां थी वो पछाड़ खा करके गिर गई, उनको होश नहीं रहा, कुछ चित्र की भांति एकदम खड़ी हो गई। कृष्ण ने उनको उनका जो निकला शब्द ये जो आयास से मैं आऊंगा आ रहा हूं, ये उनको सुनाई पड़ा, किनको सुनाई पड़ा, जिन जिनका हृदय दिया व्यथित कुछ कम है उन लोगों ने सुना, तो ये क्या हुई, ये सुन लिया, ये क्या हुई, यही दौत ये दूत है, एक तो कृष्ण का वचन जो निकला वचन रूपी दूत, ना खुजली दूती, आंख से ही उनका प्रणय हुआ, उसमें दूती की जरूरत नहीं हुई, ये प्रणय हम लोगों का हुआ, राधा जी कह रही हैं, अब दूती की क्या जरूरत है, अब विरह में ये दूती क्या करेगी, इसलिए यहां पर कहा निराशा निर्भय वृतु, अब गोविंद अभी नहीं आएगा, किंतु आशा लिए हुए क्या, कृष्ण कभी झूठे नहीं हो सकते, आज तक उन्होंने जितना वादा किया है सब पूरा किया है, वो सत्य प्रतिज्ञ है, धीर ललित है नायक, धीर ललित माने नायक माने क्या, वशीभूत होने पर भी उसके प्रत्येक बात को जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए धीर हैं, रामचंद्र जी धीर हैं किंतु ललित नहीं है, कोई धीर उद्धत है, किंतु कृष्ण ये चारों प्रकार के नायक हैं, धीर ललित, धीर शांत, धीर उद्धव, धीर उद्धात, उद्धात भी हैं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं एक क्षीण आशा लेकर। अभी कहीं मैं गया था, कोई और किसी और का पति मर गया या किसी का बेटा मर गया, किसी मैया का, और मैया रोते रोते पागल है और कह रही है हमारा बेटा मरा नहीं, वो आएगा। ये क्षीण आशा है कि वो गया है, अब वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, इसीलिए प्राण धारण कर रही। किंतु लड़का तो गया है मर, उसको विश्वास नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं जैसे वो तुम्हारा लड़का तो मर गया, नहीं भाई वो मरा तो नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र जी के लिए पेपरों में आ रहा है सुभाष चंद्र मरे नहीं अभी हैं। अच्छा ये बतलाओ तो 100 वर्ष से अभी की उम्र अब हो गई होती, वो भला है तभी एक छीड़ आता है ना। तो ऐसे ही विरही अपने विरह के लिए, प्राण शांत के लिए गोपियां सोच रही हैं, जब कह करके गए हैं आज तक उन्होंने वादा निभाया है इसलिए आएंगे। इसलिए उस समय तो कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ती हुई चली गई और नहीं आए। तो अब सोच रही हैं जैसे वो जब गए हैं किसी गंभीर कार्य के लिए तो कार्य को पूरा करके जरूर आएंगे, आए से जब कहा है उन्होंने आएंगे। इसलिए घर को लौटी, अच्छा अब कल के लिए देख रही है, अच्छा कल आएंगे, फिर कल पर कल कह रही है अब आते होंगे, फिर देख रहे आज नहीं आया, रात भर देखता रही, देखती रही। और कैसे उनके प्राण बच रहे हैं, प्रिय चेष्टितम मिन्नु गायन का प्रिय चेष्टितम, कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन करते हैं। तो क्या करती हूं, जस्यानुराग ललित बल गोमित्र इत्यादि सब गायन करते हुए, गोविंद दामोदर इत्यादि का गायन करते हुए, जैसे है ना कृष्ण रमन प्रेष्ट बस इसका गायन करने लगी। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, हा हा सदानुभविताशिबुज। ये सब कृष्ण के लीला चरित्रों का रात में जैसे उनके साथ में हुआ, उनके आंसुओं को पोछे, उनके सम बिंदुओं को पोछा, उनके मुख की धूल को पूछा, उनके चरणों में नपुर पान आ रहे हैं, ठिठोलियां उनसे कर रहे हैं, ये सब का क्या है वो रहस्य संविदो हृष्टयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम विहरण चते ध्यान मंगलम। हमारे मन कलिलतान मना कांत गच्छति, ये सब चीजें को याद कर रही है कि कृष्ण कैसे हमसे चिठोली और ये सब रसिक बातें करते हैं और रो रही हैं और श्लोकबद्ध अपने आप कर रही हैं। इसके लिए श्लोक और पद्य में उनको बनाना पड़ता, अपने आप सरस्वती उनके जीवा में, वो तो खुद सरस्वती का भी सात देवी श्रीमती राधिका है, अपने आप ये सब। ये जो जयति से अधिकम व्यास ने नहीं लिखा, समाधि में उन्होंने जो कहा वो उसी को ये कर रहे हैं, इसलिए राधिका जी के मुख से या गोपियों के मुख से ये निकले गोपी गीत। ये व्यास जी का रचित नहीं है, लोग समझते हैं ये भूल है, उन्होंने समाधि में ये सुना और सुन करके ये गोपी ऊंचू बेणु गीत, ये गोपियों की जो बातें हैं ये सब व्यास की और किसी का लिखा हुआ नहीं, ये गोपियों के मुख से हैं, उन्होंने समाधि में इसका अनुभव करके और श्रवण किया तब लिखा। ये श्रीमद् भागवत क्या है, समाधि के इसलिए ऐसा मत समझना जो व्यास देव जी ने इसको लिखा नहीं, श्रवण किया उसको समाधि में सुना सुन करके उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया अक्षरों में। तो विषयों को अहनी निम्न गायन था प्रिय चेषितम, विशोक न्यास शब्द है, विशोक माने उन शोक रहित हो गए। कब शोक रहित हो रही हैं, जब कृष्ण का गायन करती हैं ना, और समझते हैं ये कृष्ण मिल रहे हैं, हमारे आंखों को पोछ रहे हैं, हमें सांत्वना दे रहे हैं कृष्ण अपने आंखों से, उस समय विश्व करके वो मानिनी बन जाती हैं, कभी स्वाधीन भक्तिका बन जाती हैं उसी समय में। कृष्ण है नहीं किंतु वो देश ऐसा देख रहे हैं, उनके ऐसे भाव अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं जो उद्धव इत्यादि लोगों के लिए समझना भी कठिन है, कृष्ण भी कभी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी। इसलिए प्रेस्तम विरह में उनके चरित्रों का गायन कर रही हैं, इसलिए कभी कभी विशोक मालूम करती हैं, जैसे उनको शोक नहीं है, किंतु ज्यों ही कीर्तन थोड़ा सा बंद हो जाता है और सामने कृष्ण को नहीं देखती हैं तो फिर क्या हो जाता है, एकदम आग में तड़पने लगती हैं, विरह में तड़प। मछली से भी अधिक भगवान अपि संप्राप्तो रामा क्रूर कुरु युतो नृप रथेन वायु वेगेन कालिंदी अघनासीन। भगवान भी, भगवान को किस लिए कहा यहाँ पर, बहुत मार्के कहा है, विशेष भाव रखता है यहाँ पर। कृष्ण गोपियों के भाव में विभावित होकर के मधुर रस को प्रकाश कर रहे हैं ना, किंतु ये मथुरा जा रहे हैं उनको भूल करके ये भगवत्ता, एक ऐश्वर्य धाम की तरफ जा रहे हैं ना, जाना उचित नहीं था, वृंदावन ब्रज को छोड़कर के गोपियों का प्रेम माता पिता का स्नेह छोड़कर के जाना संभव नहीं था, किंतु चूंकि भगवान है उनमें ऐश्वर्य भी भाव है, इसलिए कंस को मारना, चारुण को मारना और सब असुरों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा भी करनी है आत्मधर्म की, इसलिए उस समय में यह ऐश्वर्य भी आया, यह ऐश्वर्य भाव संक्रामित होने के कारण ही मथुरा जा रहे, इसलिए ये भगवान है। तभी यदि नंद पुत्र होते, गोपीकांत होते, राधा रमण होते तो जाते, कभी संभव नहीं था, इसलिए उनके लिए कहा, जैसे देखो ऐसा मत समझो वो भगवान भी हैं, उनके लिए तो और भक्तों के भी भाव देखने हैं ना, उनको ये भी देखना है कि कंस को मारना है, हमारे माता पिता जो ऐश्वर्य रस के ये हैं, हमारे उपासक हैं, वो बेड़ियों हथकड़ियों में बंद हैं, उनके छाती पर चक्की रख करके दाल पीसा जा रहा है, अपने पैरों के अंगूठे से उसे मारता है, अपमानित करता है, किस लिए, हमारे लिए, इन्हें जरूर चलना है। द्वारका में बहुत सी रानियों के साथ में विवाह करना है, वहां पर असुर जैसे काल जमन है और जरासंध है, वो चक्रभुज कौन बनाता है, कौन तो बात पे इनका संहार करना है, वो बंदर दिली इत्यादि का ध्वंस करना है, ये सब ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं, इसलिए उसको करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान अपि भगवान होते हुए भी वो जा रहे हैं। राम अक्रूर तो जुतो, यहां पर राम है और अक्रूर, अक्रूर कौन रस के भक्त हैं, दास से माने कौन, दास ब्रज का दास से नहीं, ऐश्वर्य युक्त, इसलिए ऐश्वर्य युक्त जो दास है उसके सामने ये मधुर गोपियों की भावनाओं को मैं कैसे मैं रोऊं और कहूं जो गोपियों के लिए मैं बहुत विरह में आतुर हूं, ये कैसे कह सकते हैं, ये संभव पर नहीं, बलदेव जी से भी नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को कहा जरा तेजी से रखिए, अब मुझसे सहा नहीं जाता, बस आगे वायु बेगे ना, वायु बेग से रथ उड़ने लगा, कैसे घाटों के माध्यम से, इस तरह से उधर गोपियां आकर के रथ का चक्का का पहिए का चिन्ह दे करके कहीं पीछा ना करें, इसे कभी घाटों से कभी इधर से कभी उधर से टेढ़ा मेढ़ा करते हुए वायु बेग से लेकर के चले। कालिंदी अपनाशिनी, कालिंदी ये कालिंदी मानी जमुना है, कालिंदी कालिंद पर्वत से निकलती हैं, उनका पानी कैसा है, कृष्ण जैसा है, क्यों कृष्ण जैसा, गोपियों को नैनों में बसते हैं, उनका काजल जमुना में गिर कर काला बन गया, कृष्ण का अंग कैसा है, नील मणि के समान है, इसलिए उन अंगों का अंग राग भी जमुना में मिल करके नीचे से नील दिखता है, क्योंकि जब उठाएंगे तब कैसे एकदम उज्जवल दिखता है, इसलिए उज्जवल नील मणि के समान है, इन्हीं के आधार पर रूप गोस्वामी ने उज्जवल नील मणि ग्रंथ की रचना की है, उनके भावों को है? वो भाव क्या है? ये जो उज्जवल नीलमणि जो भाव जो है श्रीमती राधिका के विषय, यही उज्जवल नीलमणि है। कृष्ण के लिए उज्जवल मणि है ऐसा नहीं, वो तो उस प्रेक्षा में उनको लगा सकते हैं, माने एक तुलना के लिए कृष्ण को नीलमणि कहते हैं, किंतु नीलमणि है क्या? राधिका जी के कृष्ण के प्रति ये जो मदनाक्ष और मादनाक्ष ये स्वभाव, ये उज्जवल नीलमणि है। ये यशोदा इनमें कालिंदी में ये कुछ संक्रमित हुए हैं उनके भाव, इसलिए वो भी काली सी दिखती हैं कृष्ण जैसी। कैसी है वो कालिंदी? अघनाशिनी, अघ को नाश करने वाली है। अघ माने पाप। कृष्ण जी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके क्या करे? तत्व उपविश्य उपस्पृश्य सलिला पित्वा मृत मणि प्रभम वृक्ष संडम अनुप्रज्य सरामो रथम आविशत। कृष्ण वहां पर रथ से उतरे बलदेव जी के साथ में, और उतर करके पावनी जमुना जी के किनारे पहुंचकर शरीर आतिपा शरीर का आचमन किया, कुछ पान किया अपने अंजलि से भरकर और आचमन किया। कैसे? मृत मणि प्रमण, समस्त अगों को नाश करने वाली है ये। कृष्ण ने सोचा आज गोपियों के विरह में बहुत व्यथित हूं, ये दुख है ना, तो दुख किस कारण से होता है? अघ के कारण होता है, अघ के कारण ही दुख होता है, बिना पाप किए तो होता नहीं। तो यहां पर विरह जो दुख है ये पाप ताप के लिए नहीं होता, किंतु इससे करोड़ गुण अधिक प्रभावशाली है। कृष्ण ने सोचा आज विरह में व्यथित हो रहा हूं, ये ताप जाता नहीं है, मैं किससे कहूं किससे करूं, कोई हमको सांत्वना देगा? ये जमुना सलीला ये राधा जी की सखी है, यदि इनका मैं स्पर्श करूं इनका पान करूं हमारा भी अतत विरह का जो ताप है ये कुछ प्रशमित हो जाए। इसलिए उतर करके जमुना के पावन कुल पर उतर करके उनका जल पान किया और अपने इस पर छिड़का, इसलिए हमारा ताप शांति। वो ताप क्या है कृष्ण का? गोपियों का विरह। पिताजी तो साथ में है, सखा लोग भी साथ में है, इसलिए उनका विरह नहीं। पीछे करके किन का विरह? जिनसे कहा जो तुम कह देना आयो से, उनके लिए नहीं। जब विरह व्यतीत होकर के वहां पर छटपटाते हुई गिर गई विरह में आतुर होकर के, उनके लिए। तो ये सोच रहे हैं कहो जमुना जी का स्पर्श से आचमन से हमारा ये ताप दूर हो जाए, इसलिए कि जमुना के किनारे बड़े बड़े सुंदर वृक्षावली है, बहुत सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं, समाल वृक्ष हैं, आम के हैं, कदम्ब के हैं, नीप हैं और तरह के फूल सब भरे पड़े हैं। इसलिए वृक्ष संड, संड माने समूह, वृक्षों से समूह से भरपूर ये जमुना है। तीर रम्य रम्भमाण गो कदम्ब भूषिता दिव्य गंध भाग कदम्ब पुष्प राजेश, तीर गंध वाह गंध जन्म गंध रंजनी मान कुनाति सर्वदार बिंदु गंध। ऐसी ये जमुना जी हैं। जमुना को देख करके उनको शांति आई और वहां उतर करके जल स्पर्श करते हैं, मालूम है ये कुछ हमारा हृदय स्पर्श हो गया, कुछ दुख उपशम हुआ। उतर करके राम के साथ में और फिर रथ में बैठे गए। फिर रथ में बैठे किस लिए? अक्रूर भी उतरे थे, अक्रूर उपमंत्र निमेश चौरथ परि कालिंद हृदमागता स्नानम दिग्ध आचरक। कितना बज गया? कौन सा अक्रूर ने क्या किया? राम के अलग उनके साथ में उतरे तो और उनके साथ में आचरण नहीं किया, क्यों? योग्यता नहीं है, इसलिए रथ पर उसे उतर करके खड़े रहे। दूसरा उनको भय है कि कोई शत्रु ना आ जाए, अगासुर बकासुर कंस के जितने अंचर हैं उनको भय है कि मैं लेकर के आ रहा हूं, जब तक वहां पर मथुरा में न पहुंचा दूं काम नहीं हो जाए, तब तक बीच में कोई सी बाधा आकर के कृष्ण बलदेव के ऊपर में आक्रमण न कर सके, इसलिए पहरा देने के नियत से पास में बैठी वो खड़े रहे उन पेड़ों की छाया में। और कृष्ण जमुना में जाकर के बलदेव जी आचमन किया, फिर उनको कहा कि आप रथ में बैठिए। मैं अभी आ रहा हूं। क्यों? उनकी सुरक्षा की दृष्टि से रथ पर धनुष बाण है। और अब मथुरा जा रहे हैं ना, अकूर जी किस कैसे आए थे रथ में, धनुष बाण अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं, साथ में कोड़ा भी है घोड़ों को चलाने के लिए, तो वो वहां पर रखे हैं। और दूसरी बात, यमुना के किनारे में जहां पानी है वहां पर कीचड़ भी हो सकता है, और हो सकता है कि कांटे कुछ भी हो। विशेष करके ब्रज में कुछ ऐसे कांटे होते हैं जो दिखते नहीं है गोखुर, वो पैर देंगे कपड़े में यहां से यहां तक भर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पैरों में यहां से यहां तक एकदम लग जाएंगे, उसके छोटे छोटे पतले पतले वो चुभ जाएंगे, वो निकलेंगे टूट करके उसी में रह जाएंगे। हम लोग गुरु जी के साथ में परिक्रमा में ये शब्द, इसलिए कोई कोई चप्पल कोई कुछ पहन लेते हैं, किंतु ये भी समझिए ये कांटे जो पहुंचते हैं भीतर में, ये आजकल एक प्रक्रिया चलती है चिकित्सा की, अंग प्रेशर का काम करती है, इसलिए कृष्ण जूते नहीं पहनते थे, इसलिए कांटों का लगना विषाक्त तो नहीं होता, हा? उसको निकालने से वो अंकु प्रेशर अपने ऊपर ये सब चीजें हो जाती हैं। हाँ, उसमें जलन होता, तो इसलिए खाली पैर तो थे, जूता तो कभी पहनते थे, इसलिए उनको रथ पर छाया में ही पेड़ के नीचे कहिए आप इधर में बैठिए, और उनसे उपमन से मैंने उनसे आदेश लेकर के मैं जाऊं चाहे स्नान कर लूं, दोपहर का समय हो गया है, चले हैं कब, सूर्योदय के समय, इसलिए यहां तक आने में, कहां की ये बात है, अक्रूर घाट की बात, ये अब निकट आ गए हैं, दोपहर हो गया, सोचा जी अब यहीं पर स्नान करके हम ये करें। हम लोगों की विधि है भजन में तीन बार संध्या करने की, स्नान करने की विधि है तीन बार, महाप्रभु तीन बार स्नान करते थे, सवेरे दोपहर में और शाम को, और तब उस समय मंत्र करते थे। ये नहीं कि दोपहर में जब थाल आ गया ना, थाल आ गया प्रसाद का, तब उस समय में प्रसाद को देख रहे हैं और अष्टांग साधन भी कर रहे हैं और मंत्र जप रहे हैं, उससे क्या होता है, ऐसा ये सब विधि नहीं है, इसके पहले स्नान करके विधिवत आचमन करके तब फिर जाओ, अचानक जी प्रसाद पाने के समय में, या रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब प्रसाद पाते हैं थाला आ गया समय नहीं रहा तो उस समय तक, ये सब डोंट डू इट लाइक दिस, डू इट इन द नीक ऑफ टाइम एट द टाइम ऑफ संध्या, इन मॉर्निंग व्हेन सन इज गोइंग टू राइज यू कैन डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ सनराइज नॉट आफ्टर दैट इफ यू आर गोइंग इन वेन एंड इन द मिड टाइम वेन एट अबाउट 12 वेन सन इज ऑन द हेड एंड इन नाइट वेन सन इज गोइंग टू सेट फॉर देयर इज सम रेडीज इन वेस्ट एट दैट टाइम we should do it all. If you are neglecting the time, you will neglect your source. इसलिए समय पर ये सब अनिक भी होना चाहिए, इसलिए दोपहर में अक्रूर जी उनसे आदेश लिया अब मैं जाऊं क्यों, इनमें ये भावना थी कि मैं इनका चाचा नहीं हूं, तो चाचा प्रेम से कहते हैं ये भगवान है, उनको भगवान का बोध था, ये कृष्ण साधारण है ये भगवान है, और ये राम कौन है, अनंत देव है, उनके आराध्य के भी आराध्य हैं ये, इसलिए उनसे आदेश लेकर के निवेश से चौर खूब करी रथ पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने कहा जी आप लोग बैठिए, यहां कोमल गद्दी है रथ के ऊपर में, और नीचे कठोर भूमि है, कांटे हैं, गोखुरे हैं, छाया नहीं है जमुना के किनारे, इसलिए छाया में यहीं पर बैठी है, और वहां पर धनुष बाण इत्यादि अस्त्र हैं, और वो लोग भी आ नहीं सकते, कोई आक्रमण करने वाले आएंगे भी तो वो लोग कुछ कर सकेंगे प्रतिकार, इसलिए बैठा करके कालिंद्या हृद मागता स्नानम विधिवत आचरे कृष्ण से कह करके उतरे, और जमुना के जहां पर घाट होता है तो घाट वहां था नहीं, जमीन कुछ कटा हुआ उसके नीचे और थोड़ा सा नीचे उसके और नीचे नीचे चले गए और यमुना में उन्होंने स्नान किया, विधिवत आचमन किया, प्रणाम किया यमुना जी को और विधिवत आचमन स्नान किया। विधिवत माने क्या, तेल लगा करके और कूद गए और तथा वो तैरने लगे, कुल्ली फेंकने लगे, ये सब नहीं। आप लोग जानते हैं हमारे बक्रेश्वर पंडित को कि कौन से पुंडरीक विद्यानी, दिन में कभी नहीं जाते थे गंगा तट पर या यमुना तट पर, रात में जाते जब कोई नहीं होता, किसी को देख टट्टी कर रहा है कि कोई शौच कर रहा है, कोई कुल्ला करके ऐसे यमुना में फेंक रहा है, स्नान करते समय ऐसे ऐसे करके कुल्ला फेंक, ऐसा मत करो। उनकी कृपा के लिए बस झट से एक या दो तीन डुबकी लगाई चले आओ, ये सब विधिवत स्नान है। आत्मा करके उनको प्रणाम करो साष्टांग पहले, तब उनकी उनका जल यहाँ पर धारण करो। ये यमुना जी कृष्ण की सखी है, कृष्ण की प्रिया जी है, ये कृपा करें हमें। निमज्ज तस्मिन् सलिले जपन ब्रह्म सनातनम भावेव दिदृशे अक्रूरो रामकृष्ण समन्वित। यमुना में स्नान किया, डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके पानी में देखा, जप जपने लगे अपना कौन मंत्र, ब्रह्म सनातन। ब्रह्म सनातन कौन, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष बस ये इनके उपास्य थे, अनंत देव का उपासना करने वाले, बस इसी का मंत्र जपने लग गए। कितना 7 बज गया ना, अच्छा जपने लगे सनातन, ये सनातन पुरुष हैं। तादेव दर्दृशे उन्हें तावे वो कृष्ण जो रथ में बैठे थे, जमी डुबकी लगाई और मंत्र जपते जपते देखा क्या, अरे रथ से उतर करके हमारे जल में ही वो आ गए राम और कृष्ण, जैसे बैठे थे। कैसे बैठे थे, मोर मुकुट तो था नहीं और रास्ते में तो उनको सोने का मुकुट भी नहीं मिलेगा, बंसी हाथ में तो थी नहीं, और जो ब्रज के जो भाव थे वो तो मैया यशोदा के यहाँ या किसी सखी के यहाँ रखा है, कहाँ पर ब्रज में ही रख सकते। इसलिए उस समय शंख चक्र गदा पद्मा या उसमें इससे भी कुछ नहीं, ब्रज का भी भाव नहीं। अभी आ गए हैं तटस्थ स्थल पर, ब्रज का यही भाव जो था यही पर छोड़ दिया और जल में उनके पास में पहुंचे, किस रूप में, देवी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, और वहीं से अपना रथ पर जो बैठे थे वो ने? उनके भीतर उनको जो दर्शन दिया वो कौन थे, वसुदेव नंद, और नंद और यशोदा के जो पुत्र थे बस चले गए अलक्षित रूप में। इसलिए कृष्ण अकुल जी के साथ में कृष्ण और बलदेव जी जो रोहिणी नंदन राम और यशोदा नंदन या राधा कांत हैं वो नहीं गए, पर डुबकी लगाई या बस इसी बीच में वो लौट गए, इनको पता ही नहीं चला। और फिर वो रथ पर आकर के देखा, जब उठे अरे वो तो वहीं पर बैठे हैं और हमने किसको देखा, ये कैसे देखा, अच्छा तो हमने वहां पर कैसे देखा, आंख मिजने लगे, कहीं हमने स्वप्न देखा या क्या हुआ, नहीं तो मैं तो ठीक ठाक हूं, सपनों तो था नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, तावत एवं दर्द से अक्रूरो रामकृष्ण समन्वित, अंदर में देखा फिर बाहर में देख करके उठकर खड़े हुए, तौ रथस्थ कथम ही, रथ के ऊपर भी जब उठ करके खड़े हुए और वहां से जरा ऊंचे पर कृष्ण बैठे थे इसलिए नीचे से उठ करके थोड़ा सा ऊपर देखा, देखा जा रही वहां पर बैठे हैं, तो ये कैसे हो गया जब मैं रथ पानी के अंदर में दिखे और उधर रथ पर भी बैठे हैं कि नहीं है, ये कैसे संभव हुआ। बहुत सोच में पड़ गए, था नहीं मिला कुछ, कुछ नहीं समझ सके। सुता आनक दंड है, आनक दंड है माने क्यों, यहाँ अनक दंड में मैंने किसको कहते हैं, वसुदेव जी को। अब इनके पुत्र को देखा, वो जो नंदन नंदन थे यशोदा नंदन वो तो, अब इसीलिए इस शब्द के द्वारा ये व्यपला है कि वहां पर जो जल में देखा ये कौन था, और फिर वही निकल करके अब रथ पर बैठ गया, देखा जी वही रथ पर बैठे किंतु वो थे नहीं। पर ही सिर्फ चंदने, चंदन मैंने रथ, अरे तब ये रथ पर कौन बैठे हैं, वो यदि चले गए नस्तर इतून मज्य दचस्त, मैंने कहा अच्छा देखे तो जल में थी, ये क्या बात, फिर डुबकी लगाई और वहां आंख खोल करके देखा क्या, अब इस बार दूसरा चीज देखा क्या, अनंत देव को देखा, अपने इष्ट देव को जो पहले दिन का भजन करते थे, शस्त्र फनाए हैं, श्री भूल नीला इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं उससे संबंधित देखा। यहां तक कि प्रहलाद ने उनको हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार इत्यादि कर रहे हैं, जितने देव साधन हैं सब नमस्कार कर रहे हैं, देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये क्यों देख रहा हूं। फिर देखा क्या, अनंत देव के गोदी में देखा, उसके भीतर में देखा, वह श्यामल चतुर्भुज एक मूर्ति है, अद्भुत रूप, शंख चक्र गदा पद्म, नाक अत्यंत सुंदर, गला अत्यंत सुंदर, कपोल इतने सुंदर, चतुर्भुज रूप है, सोने के मंड आभूषण से परिमंडित है। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ये क्यों ऐसा हो रहा है, अब इसकी व्याख्या हम कल करेंगे।